नमस्कार और स्वागत है। आज हम सीधे उतर रहे हैं एक ऐसे स्रोत में जो भाषा की बिल्कुल बुनियाद से जुड़ा है। यह है एक ग्रामर चैप्टर, चैप्टर वन, जिसका पूरा ध्यान सेंटेंसेस पे है।
जी
तो हमारा आज का इरादा है इस चैप्टर के जरिए सेंटेंसेस की दुनिया को दोबारा समझना, उसके मुख्य हिस्सों को ताज़ा करना। हम देखेंगे कि सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, उनके हिस्से क्या हैं और वो कितनी तरह के होते हैं। ये सब कुछ एक हल्की फुल्की बातचीत के अंदाज में। सोचे, ये इस चैप्टर का एक दिलचस्प रीकैप है।
हाँ बिल्कुल, एक तरह से बुनियादी बातों को फिर से पक्का करना।
हाँ, चैप्टर की शुरुआत ही एक मजेदार हिस्से से होती है, लेट्स ऑब्जर्व एन आंसर। इसमें कुछ तस्वीरें देखकर सवाल पूछे गए हैं, जैसे हु इज फ्लाइंग अ काइट, व्हाट इज मीला डूइंग ऑन द स्विंग, कैन यू सी अ डॉग, व्हाट इज इट डूइंग। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें शब्दों को एक साथ रखना पड़ा, है ना?
हाँ बिल्कुल, जैसे एक जवाब हो सकता है राज इज फ्लाइंग अ काइट। अब ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मिलकर एक पूरी बात बता रहे हैं और यही है सेंटेंस का सार। जैसा श्रोत कहता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा मतलब निकलता हो। ये कंप्लीट सेंस वाली बात बहुत जरूरी है। सिर्फ शब्द जोड़ देना काफी नहीं, उनका एक सार्थक मतलब निकलना चाहिए। हम दिन भर में न जाने कितने सेंटेंसेस बोलते और सुनते हैं, दोस्तों से, घर पर, काम पर। ये वो ढांचा है जिसमें हम अपने विचार ढालते हैं, बिना इसके शायद कम्युनिकेशन संभव ही ना हो पाए।
हाँ, मतलब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो अपने आप में पूरी हो।
ठीक है, तो ये तो हुई पहचान। अब आते हैं उन नियमों पर जो इन सेंटेंसेस को सही शक्ल देते हैं। श्रोत में दो बुनियादी नियम बताए गए हैं। पहला है कि हर सेंटेंस की शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होती है, सही?
और दूसरा नियम है कि सेंटेंस के अंत में आमतौर पर एक फुल स्टॉप लगता है।
ये नियम सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, कैपिटल लेटर हमें बताता है कि यहाँ से एक नई बात, एक नया वाक्य शुरू हो रहा है।
अच्छा।
और फुल स्टॉप बताता है कि यहाँ ये बात खत्म हुई। ये पढ़ने वाले के लिए एक सिग्नल की तरह काम करते हैं, खासकर जब हम लंबे पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं। ये हमारी आंखों और दिमाग को टेक्स्ट को प्रोसेस करने में मदद करते हैं।
स्रोत में एक उदाहरण भी है, अमित लाइक्स मैंगोज।
यहाँ अमित का एक कैपिटल है और आखिर में फुल स्टॉप लगा है।
ये दिखाता है कि नियम कितने सीधे हैं पर कितने जरूरी हैं। अच्छा, आपने कहा आमतौर पर फुल स्टॉप लगता है, इसका मतलब और भी कुछ लगता है अंत में?
हाँ बिल्कुल, फुल स्टॉप सबसे आम है, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, सेंटेंसेस के प्रकार के आधार पर अंत में क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है। चैप्टर इन पर भी बात करता है। ये अलग अलग निशान वाक्य के मकसद या भाव को स्पष्ट करते हैं। सोचिए, अगर हर तरह के वाक्य के अंत में से फुल स्टॉप होता तो सवाल पूछने या हैरानी जताने का अंदाज लिखित रूप में कैसे पता चलता?
ये बात तो है, पंक्चुएशन वाकई में लिखित भाषा को टोन और मतलब देने में मदद करता है।
जी
चलिए अब सेंटेंस के अंदर झांकते हैं।
जी,
स्रोत बताता है कि हर सेंटेंस के दो मुख्य हिस्से होते हैं।
जी,
एक होता है नेमिंग पार्ट, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं।
जी,
और दूसरा होता है टेलिंग पार्ट, जिसे प्रेडिकेट कहा जाता है।
हाँ, ये विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है।
इसे सरल तरीके से समझें।
जी,
नेमिंग पार्ट यानी सब्जेक्ट,
ये वो हिस्सा है जो बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। ये कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार हो सकता है। हु या व्हाट का जवाब अक्सर सब्जेक्ट होता है।
ओके।
और टेलिंग पार्ट यानी प्रेडिकेट, ये वो हिस्सा है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इसमें आमतौर पर वर्ब मतलब क्रिया शामिल होती है। चलिए फिर से वही उदाहरण लेते हैं, अमित लाइक्स मैंगोज। इसमें बात किसके बारे में हो रही है?
अमित के बारे में।
तो अमित हुआ सब्जेक्ट यानी नेमिंग पार्ट।
बिल्कुल, और अमित के बारे में क्या बताया जा रहा है कि उसे आम पसंद है?
लाइक्स मैंगोज, तो ये हिस्सा हुआ प्रेडिकेट यानी टेलिंग पार्ट। ये प्रेडिकेट ही है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है।
स्रोत में एक ग्रामर बाइट सेक्शन भी है जो इसी बात को और पुख्ता करता है। उसमें कहा गया है कि सब्जेक्ट अक्सर काम करने वाला द डूअर होता है।
हाँ, द डूअर।
और प्रेडिकेट उसके काम द एक्शन या उसके होने की अवस्था स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट का तालमेल ही वाक्य को अर्थपूर्ण बनाता है।
बिल्कुल, और इन दोनों हिस्सों को पहचान पाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये वाक्य की संरचना को समझने में मदद करता है। जब हम लंबे या जटिल वाक्य लिखते या पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने से मतलब निकालना आसान हो जाता है। ये स्पष्ट सोचने और स्पष्ट लिखने की कुंजी है। कई बार वाक्य में गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब, जो प्रेडिकेट का हिस्सा है, उनमें तालमेल नहीं होता। इन्हें पहचानना सीखने से ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है।
सही कहा। ये बुनियाद मजबूत हो तो आर्य भाषा सीखना आसान हो जाता है। तो अब तक हमने समझा कि सेंटेंस क्या है, उसके शुरू और अंत के नियम क्या हैं, और उसके दो मुख्य भाग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हैं। अब बात करते हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। स्रोत के अनुसार मुख्य रूप से चार तरह के सेंटेंसेस हैं। एक एक करके इनको देखते हैं।
प्रकार है असर्टिव सेंटेंस, इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसा नाम से ही लगता है, ये वाक्य कुछ असर्ट करते हैं, यानी कोई तथ्य बताते हैं या कोई राय देते हैं। ये सीधी साधी जानकारी देने वाले वाक्य होते हैं।
अच्छा।
और इनके अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। स्रोत में इसके उदाहरण है, शी लव्स रीडिंग बुक्स, ये एक पसंद या आदत बता रहा है। और द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक सार्वभौमिक तथ्य है।
दोनों ही जानकारी दे रहे हैं और दोनों के अंत में फुल स्टॉप है। ये शायद हमारे रोजमर्रा के लिखने बोलने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते होंगे।
हाँ, निश्चित रूप से। अधिकतर जानकारी का आदान प्रदान असर्टिव सेंटेंसेस के जरिए ही होता है। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेट का मतलब ही होता है पूछताछ करना।
हाँ, इनकी पहचान बहुत आसान है। इनके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। उदाहरण के लिए, स्रोत से आर यू कमिंग टू द पार्टी या व्हाट इज योर नेम, ये सीधे सीधे जानकारी मांग रहे हैं।
अच्छा, इनका इस्तेमाल सिर्फ जानकारी मांगने के लिए होता है या और भी कुछ?
मुख्य रूप से जानकारी मांगने के लिए ही, लेकिन इनका इस्तेमाल बातचीत को आगे बढ़ाने, किसी को सोचने पर मजबूर करने,
अच्छा,
या कभी कभी विनम्रता से अपनी बात रखने के लिए भी किया जा सकता है। एक सवाल अक्सर जवाब देने वाले को ज्यादा एंगेज करता है।
दिलचस्प। अब तीसरा प्रकार है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये थोड़े अलग मिजाज के हैं। स्रोत कहता है कि ये वाक्य कोई आदेश, कमांड, अनुरोध, रिक्वेस्ट या सलाह, एडवाइस देते हैं।
हाँ, इनमें काम करने का निर्देश होता है। इनके अंत में फुल स्टॉप भी लग सकता है और कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क भी।
ओ।
एक्सक्लेमेशन तब लगता है जब आदेश या निर्देश में ज्यादा जोर हो या कोई तीव्र भावना जुड़ी हो। एक और खास बात इन वाक्यों की ये है कि इनमें सब्जेक्ट यानी यू अक्सर छुपा होता है पर समझा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ सिट डाउन, तो इसका मतलब है यू सिट डाउन। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। स्रोत में उदाहरण भी हैं। अनुरोध के लिए प्लीज सिट डाउन, यहाँ फुल स्टॉप है।
आदेश के लिए डोंट टच दैट या कीप क्वाइट, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल हो सकता है अगर जोर देना हो। तो ये वाक्य सीधे एक्शन पर फोकस करते हैं।
बिल्कुल, ये निर्देश देने में बहुत काम आते हैं। और चौथा प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये वाक्य अचानक मन में उठी तीव्र भावनाओं, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस या एहसासों को व्यक्त करते हैं, जैसे खुशी, दुख, हैरानी, डर आदि। इनकी पहचान है इनके अंत में लगा एक्सक्लेमेशन मार्क, पॉइंट हिस्टेरिक। स्रोत के उदाहरण देखें तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, इसमें प्रशंसा और आश्चर्य का भाव है।
हाँ, या फिर ओ नो आई फॉरगॉट माय कीज, इसमें परेशानी या अफसोस जाहिर हो रहा है। इन वाक्यों का लहजा ही बता देता है कि कोई मजबूत भावना व्यक्त की जा रही है।
सही, ये वाक्य भाषा में रंग भरते हैं, उसे ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं। तो ये हैं चार मुख्य प्रकार, असर्टिव बयान, इंटरोगेटिव सवाल, इम्पेरेटिव आदेश अनुरोध, और एक्सक्लेमेटरी भावना।
हर एक का अपना काम है, अपनी पहचान है और अपना खास पंक्चुएशन मार्क है।
सही, इन चारों प्रकारों को समझना और सही जगह इस्तेमाल करना प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे सही तरीके से सही भाव के साथ प्रस्तुत करना भी अहम है।
ये बात तो माननी पड़ेगी, अलग अलग तरह के वाक्यों से हमारी बात ज्यादा सटीक और असरदार बन सकती है। अच्छा, इन सब कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करने के लिए चैप्टर में कुछ प्रैक्टिस एक्टिविटीज भी दी गई हैं, उन पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी काफी नहीं होती।
हाँ, ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पढ़े हुए को रटना नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करना सिखाते हैं। जैसे एक एक्टिविटी है मैच द पार्ट्स टू मेक सेंटेंसेस, इसमें एक तरफ सब्जेक्ट्स दिए होते हैं और दूसरे तरफ प्रेडिकेट्स, और उन्हें सही तरीके से मिलाना होता है।
अच्छा।
जैसे द पीकॉक को इज अ नेशनल बर्ड से मिलाना, इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच का तार्किक संबंध समझ आता है।
और एक एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें वाक्य का एक हिस्सा दिया होता है और दूसरा हिस्सा अक्सर प्रेडिकेट चुनकर या लिखकर पूरा करना होता है। ये वाक्य बनाने की क्षमता को जांचता है। फिर एक और आम एक्टिविटी है जिसमें वाक्य में सब्जेक्ट को सर्कल करना होता है,
हाँ,
और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना होता है। जैसे उदाहरण दिया है, द सन शाइन्स ब्राइटली, इसमें द सन सब्जेक्ट है, उसे सर्कल किया, और शाइन्स ब्राइटली प्रेडिकेट है, उसे अंडरलाइन किया।
ये सर्कल और अंडरलाइन वाली एक्टिविटी खासकर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। इससे नजर सज जाती है कि वाक्य के ये दो मुख्य हिस्से कौन से हैं। इसके अलावा स्रोत में कुछ और मजेदार गतिविधियां भी बताई गई हैं, जैसे सेंटेंस स्क्रैम्बल फन, और उन्हें सही क्रम में लगाकर एक मतलब वाला वाक्य बनाना होता है। ये वर्ड ऑर्डर की समझ को बेहतर बनाता है।
हाँ, वो स्क्रैम्बल वाली एक्टिविटी तो मजेदार लगती है, और एक सेंटेंस पजल का भी जिक्र है। लगता है ये गतिविधियां सीखने को बोझल बनाने की बजाय खेल जैसा बना देती हैं।
यही इनका उद्देश्य है। ग्रामर सीखना सूखा या उबाऊ लगे ये जरूरी नहीं। इन अभ्यासों से नियम और परिभाषाएं याद रखने में भी मदद मिलती है और उनका सही इस्तेमाल भी समझ आता है। ये एक्टिव लर्निंग का हिस्सा है।
बिल्कुल। तो अब जब हमने चैप्टर के लगभग सभी मुख्य पहलुओं, परिभाषा, नियम, हिस्से, प्रकार और अभ्यास पर बात कर ली है, तो अंत में क्यों ना असेसमेंट एंड रिव्यू सेक्शन में दिए गए पॉइंट्स टू रिमेम्बर को एक बार दोहरा लिया जाए। ये एक तरह से पूरी चर्चा का निचोड़ होगा।
हाँ, ये अच्छा रहेगा, मुख्य बातें फिर से ताजा हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस, यानी शब्दों का वो समूह जिसका पूरा और सार्थक मतलब निकले, वही सेंटेंस है।
जी।
दूसरा पॉइंट, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, वाक्य की शुरुआत हमेशा बड़े अक्षर से, ये नियम है, विकल्प नहीं।
अ सेंटेंस यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप डॉट। यूजुअली शब्द यहां महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा कि प्रकार के आधार पर क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन भी अंत में आ सकता है।
सही पंक्चुएशन जरूरी है।
बहुत बढ़िया। ये पांच बिंदु इस चैप्टर के सार हैं। तो आज की इस बातचीत में हमने चैप्टर वन के आधार पर सेंटेंस की दुनिया की सैर की। हमने समझा कि सेंटेंस क्या है, उसके दो अहम हिस्से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या काम करते हैं, वाक्य बनाने के बुनियादी नियम मतलब कैपिटल लेटर, पंक्चुएशन क्यों जरूरी हैं, और कैसे हम अपनी बात कहने के लिए चार अलग अलग तरह के सेंटेंसेस, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब भाषा की वो ईंटें हैं जिनसे कम्युनिकेशन की पूरी इमारत खड़ी होती है।
बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोत हमें नियम और प्रकार सिखाता है, जो कि जरूरी है, पर क्या असल चुनौती ये नहीं कि हमें नियमों और प्रकारों का इस्तेमाल कितनी कुशलता से करते हैं?
हाँ, ये सोचने वाली बात है।
क्या हमने कभी सोचा है कि एक ही बात को असर्टिव तरीके से कहने के बजाय अगर उसे इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी अंदाज में कहा जाए तो सुनने वाले पर उसका क्या और कितना अलग असर पड़ सकता है? सिर्फ नियमों को जानना एक बात है, और उन्हें अपनी बात को ज्यादा प्रभावी, ज्यादा दिलचस्प या ज्यादा सटीक बनाने के लिए इस्तेमाल करना वो दूसरी बात है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।
सही।
इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा उपयोगी रही होगी।